पृष्ठ संख्या 81। प्राकृत और लोक भाषाएं। संस्कृत के समानांतर प्राकृत का व्यवहार लगभग उसी समय से आरंभ होता है जिस समय से वैदिक युग के बाद संस्कृत का प्रसार होता है। अशोक के शिलालेखों, अश्वघोष भाष, कालिदास के नाटकों और भरत के नाट्य शास्त्र में प्राकृतों का प्रयोग हुआ है या उनका उल्लेख है। पाली भाषा को भी एक प्रकार की प्राकृत मानकर प्राकृत शब्द के अंतर्गत उसका विवेचन भी शामिल कर लेना चाहिए। प्राकृतिक जनपदों की जीवंत भाषाएं नहीं थी। इनका शब्द भंडार व्याकरण व्यवस्था मूलतः संस्कृत की थी। मुख्य भेद ध्वनि तंत्र को लेकर था। पाणिनि के समय में संस्कृत शिष्ट जनों की भाषा थी। इसका अर्थ यह है कि अंतर जनपदीय व्यवहार के लिए शिष्ट जन इसका उपयोग करते थे। जनपदीय स्तर पर भी उसका व्यवहार होता था, पर वह किसी भी जनपद में शिष्ट जनों से भिन्न जनसाधारण की भाषा नहीं थी। संस्कृत के बारे में यह तथ्य बहुत से लोग स्वीकार करते हैं, किंतु प्राकृतों के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। इन्हें कुछ जनपदीय नाम से दिए गए थे। इससे इस भ्रांति का पोषण होता है कि ये वास्तव में जन साधारण की भाषाएं थी। भारत में जहाँ भी जैन धर्म फैला, वहाँ प्राकृत का व्यवहार हुआ। संस्कृत के ही समान प्राकृत के केंद्र उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी स्थापित हुए। जहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, वहाँ पाली के केंद्र स्थापित हुए। बौद्ध धर्म के लिए पाली से भिन्न प्राकृत तथा संस्कृत का प्रयोग भी हुआ। विशेषतः मध्य एशिया में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाली और प्राकृत का घनिष्ठ संबंध बौद्ध और जैन धर्मों से था। पाली में ऐसा साहित्य नगण्य है जिसका उद्देश्य धर्मोपदेश न हो। प्राकृत में बहुत सा श्रृंगार साहित्य रचा गया, पर बहुधा इसका उद्देश्य भी धर्मोपदेश होता है। साहित्य में जनपदीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। उसे अत्यंत सरल करके यह रूप दिया गया कि संस्कृत सुशिक्षितों की भाषा थी, जबकि जन सामान्य की भाषा होने से प्राकृत को बाल वृद्ध स्त्रियां और अनपढ़ सभी समझ सकते थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, भूमिका पृष्ठ 2। ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। प्राकृत भाषाएं जन सामान्य द्वारा वैदिक काल से बोली जा रही थी। आचार्य पाणिनि ने साहित्य की भाषा को छंदस कहा, लोक भाषा को भाषा कहा। इससे भी प्राकृत की प्राचीनता और लोकप्रियता सिद्ध होती है। इन्हीं प्राकृत भाषाओं में बुद्ध और महावीर ने साधारण जनता के हितार्थ अपना प्रवचन सुनाया था। बुद्ध और महावीर के युग से लेकर 18वीं शताब्दी तक प्राकृतों में स्तुति स्रोत आख्यान। पृष्ठ संख्या 82। चरित काव्य, नाटक, सट्टक, व्याकरण, कोश, अर्थशास्त्र, संगीत शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि आदि शास्त्रों की रचना होती रही। प्रेम और श्रृंगार से पूर्ण काव्यों की रचना हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि 18वीं सदी के बाद प्राकृतों के अपदस्त होने से राष्ट्रीय एकता विघटित हो गई। इसके साथ ही भारतीय जनतंत्र का भी नाश हो गया। रामकृष्ण मिशन के सांस्कृतिक प्रतिष्ठान से भारत के सांस्कृतिक रिक्त पर एक विशाल ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इसमें डॉक्टर हीरालाल जैन ने जैन धर्म के इतिहास, सिद्धांतों आदि का विवरण देते हुए अपने निबंध में लिखा है, देश के भाषाई विकास में जैन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। संस्कृत सदा से धार्मिक रचनाओं और ब्राह्मणों के मत प्रचार का माध्यम रही है और पाली बौद्धों के इसी कोटि के कार्यों का माध्यम रही है, किंतु जैनों ने विभिन्न देश काल के प्रचलित भाषाओं का उपयोग अपने धार्मिक प्रचार तथा ज्ञान की सुरक्षा के लिए किया। इस प्रकार उन्होंने प्राकृत भाषाओं के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डाला। उन्होंने कुछ प्रादेशिक भाषाओं को पहले पहल साहित्यिक रूप भी दिया। इस उद्धरण में पहला और अंतिम वाक्य सही है। भाषाई विकास में अन्य मतावलंबियों के समान जैनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत को ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्मगुरु अपनी विशेष भाषा समझते रहे, पर जातीय भाषाओं में पुराने समय की देशी भाषाओं में साहित्य का विकास धर्म निरपेक्ष स्तर पर हुआ है। तमिल, कन्नड़, हिंदी, बंगला, मराठी भारत की किसी भी जातीय भाषा को धर्म विशेष, मत विशेष से बाधा नहीं जा सकता। अंग्रेजी राज कायम होने के बाद उर्दू का संबंध इस्लाम से जोड़ा गया, पर यह भी अंग्रेजी राज की प्रतिष्ठा के बाद ही हुआ। दरअसल संस्कृत में अश्वघोष जैसे बौद्ध कवियों ने काव्य रचना की और ईसवी सन की पहली शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जिस प्रेम और श्रृंगार साहित्य की रचना हुई वह साहित्य डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने जैन के अनुसार प्रायः अजैन विद्वानों द्वारा लिखा गया। प्राकृत साहित्य का इतिहास, भूमिका, पृष्ठ संख्या 3। जो लोग संस्कृति को थोड़े से व्यक्तियों के साथ के हाथ में गुप्त ज्ञान का पिटारा बनाकर रखते थे, उनका स्वार्थ इसी में था कि वे संस्कृति के क्षेत्र में लोक भाषाओं का व्यवहार न होने दे। यूरोप के नवजागरण युग में लैटिन को हटाकर उसके स्थान पर नवीन जातीय भाषाओं का व्यवहार करने के लिए दीर्घ काल तक संघर्ष चला। उसी तरह संस्कृत और प्राकृत के विरुद्ध भारत में यह संघर्ष दीर्घ काल तक चला। इस संघर्ष के बिना आधुनिक भारतीय साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यूरोप का साहित्य फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य है। भारतीय साहित्य भारत की जातीय भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य है। पृष्ठ संख्या 83। संस्कृत और प्राकृत में रचा हुआ साहित्य भारतीय साहित्य के बाहर नहीं है, वैसे ही जैसे लैटिन में लिखा हुआ पुराना ही नहीं 17वीं सदी तक का साहित्य यूरोप के साहित्य से बाहर नहीं है, किंतु आधुनिक साहित्य की शुरुआत यूरोप की जातीय भाषाओं में रचे हुए साहित्य से होती है। यही स्थिति भारत में है। यूरोप में जिसे बल्गर लैटिन कहते थे उसकी स्थिति प्राकृत से मिलती जुलती है, लैटिन की स्थिति संस्कृत से मिलती है। यूरोप के सामंत पुरोहित तथा उनसे संबद्ध बुद्धिजीवी लैटिन के पक्ष में जातीय भाषाओं के अभ्युदय को भरसक रोकते रहे, वैसी ही स्थिति भारत में थी। संस्कृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी, इसे तो हर आदमी जानता है, किंतु प्राकृत का व्यवहार भी सामंतों और पुरोहितों के हट के कारण होता चला जा रहा था। यह तथ्य लोगों की आंखों से ओझल है। डॉक्टर हीरा लाल जैन ने अपने उल्लिखित निबंध में जैन धर्म के प्रसार का विवरण देते हुए बताया है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म प्रचारकों का एक दल दक्षिण गया और जैन धर्म को सम्राट का संरक्षण भी मिला। कहा गया है कि महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं भद्रबाहु के दक्षिण अभियान में उनके शिष्य होकर सम्मिलित हुए थे। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म स्वीकार किया और स्वयं जैन मूर्तियां स्थापित करके उस धर्म का संवर्धन किया। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक गंग, कदम्ब, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे दक्षिण के राजवंशों ने जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया। मान्यखेत के कुछ राष्ट्रकूट राजाओं ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक जैन धर्म के प्रति विशेष आकर्षण व्यक्त किया और जैन कला तथा साहित्य के विकास को बड़ी प्रेरणा दी। उनके संरक्षण में अत्यंत विख्यात अनेक जैन कवि हुए। अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत को कृष्ण तृतीय के मंत्रियों और उनके उत्तराधिकारी का संरक्षण प्राप्त हुआ। 1100 ईस्वी के लगभग जैन धर्म को गुजरात में प्रमुखता प्राप्त हुई। वहाँ के चालुक्य राजा सिद्धराज और उसके पुत्र कुमार पाल ने खुलकर जैन धर्म स्वीकार किया और जैनों की साहित्यिक तथा मंदिर निर्माण कार्रवाई को प्रोत्साहन दिया। अनेक विषयों पर, धार्मिक तथा सांसारिक विषयों पर विभिन्न ग्रंथों के रचयिता कुमार पाल इन्हीं के दरबार में थे। 11वीं-12वीं शताब्दी के समय को प्राकृत साहित्य की उन्नति का विशेष युग मानते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने लिखा है, इस समय गुजरात में चालुक्य, मालवा में परमाल तथा राजस्थान में गुही, लोत और चाहमाड़ राजाओं का राज्य था और इन राजाओं का जैन धर्म के प्रति विशेष अनुराग था। फल यह हुआ कि गुजरात में अड़हिल्लपुर, पाटड़, खंभात और भड़ौच, राजस्थान में भिन्नमाल, जाबालीपुर और चित्तौड़ तथा मालवा में उज्जैन, ग्वालियर और धारा आदि। पृष्ठ संख्या 84। नगर जैन श्रमणों की प्रवृत्तियों के केंद्र बन गए। यह सामंत वर्ग भीतर से कितना जर्जर हो गया था, यह तुर्क आक्रमण के समय बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया। वह अपनी प्रजा से बिल्कुल कटा हुआ था। उसका सैन्य दल किसानों को दबा कर रख सकता था, पर हाथी या घोड़े पर जहाँ राजा न दिखाई दिया वह भाग खड़ा होता था। मत विशेष के साथ प्राकृतों का संबंध इतना गहरा था कि मत विशेष की शाखाएं प्राकृत की विशेष शाखाओं से संबद्ध हो गई। डॉक्टर राम सिंह तोमर ने बताया है, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन संप्रदायों द्वारा प्राकृत में साहित्य लिखा गया है। दिगंबर संप्रदाय के आचार्यों ने शौर सेनी प्राकृत में लिखा है और श्वेतांबरों ने महाराष्ट्री में। प्राकृतों के साथ जो प्रादेशिक नाम जुड़े हैं वे बहुत भरोसे के नहीं है। इन नामों से प्राकृतों का प्रादेशिक भाषाएं होना सिद्ध नहीं होता। सेतुबंध काव्य के लेखक कश्मीर के प्रवरसेन कहे जाते हैं। कश्मीर में वह महाराष्ट्री प्राकृत लिखते हैं। कन्नौज के दरबारी कवि वाक्पति राज गौड़ वहो काव्य लिखते हैं। इसकी भाषा भी महाराष्ट्री प्राकृत है। गुड़ाट्य गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान नगर में बृहत कथा सरित सागर पैशाची प्राकृत में रचते हैं। हेम चंद्रकृत कुमार पाल चरित में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सब कुछ है। डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने प्राकृत ग्रंथों के विवरण में लिखा है कि एक ही ग्रंथ में अनेक प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। कुमार पाल चरित के समान कुवलय माला में संस्कृत और अपभ्रंश भी है और महाराष्ट्री प्राकृत के साथ पैशाची प्राकृत भी है। भले ही इसके लेखक ने दूर दूर तक भ्रमण किया हो और अनेक देशी भाषाओं की जानकारी प्राप्त की हो, यह बात संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में रचना करने से सिद्ध नहीं होती। इसमें पांडित्य प्रदर्शन अवश्य है। कुमार पाल चरित के बारे में डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने लिखा है कि इसके अंतिम दो सर्गों की रचना शौर सेनी मागधी पैशाची, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश भाषा में है। यह बोलियों का यह वह मिश्रण है नहीं है जो जातीय भाषा के निर्माण काल में देखा जाता है। यह केवल पांडित्य प्रदर्शन है, वास्तविक लोक भाषाओं से जिसका कोई संबंध नहीं है।